पृष्ठ संख्या 64 दशम बिंदु कुरान और स्त्री जाति। स्वयं अलौकिक होते हुए भी लौकिक उन्नति का कोई भाग नहीं है जिसमें इस्लाम का हाथ दिखलाई न पड़ता हो। प्राचीन जातियों की धर्म प्रियता तो प्रसिद्ध ही है। आजकल की जातियों के बारे में कहा जाता है कि उनकी उन्नति में उनके धर्म का प्रभाव है। धार्मिक विचार यद्यपि अनुद्भूत रूप में व्यक्ति से संबंध रखता है किंतु वस्तुतः वही धर्म बाहरी व्यवहार में भी प्रविष्ट हो जाता है। बाहर से देखने पर यद्यपि धर्म का आधारभूत वह छिपा अस्थि पंजर दिख नहीं पड़ता किंतु कौन कह सकता है कि वहां उसका अस्तित्व नहीं। मनुष्य शनै शनै उनमें इतना परिपक्व हो जाता है कि उनके लिए उन विचारों के परित्याग से अपना सर्वस्व परित्याग करना सुलभ हो जाता है। इतिहास में इसके अनेक उदाहरण पाए जाते हैं। आशावाक धर्म स्वर्ग की और मनुष्य को अग्रसर करता है और निराशावाक पाताल के लिए। जिस प्रकार धर्म व्यक्तिगत है उसी प्रकार अनेक व्यक्तियों का धर्म एकत्रित हो समष्टिगत भी हो जाता है। यही कारण है कि इसका प्रभाव व्यक्ति की आत्मा से लेकर जाति की आत्मा तक रहता है। समाज और स्त्रियां। कुरान एक धर्म का प्रचार करता है जिसका प्रभाव अनेक व्यक्तियों पर होना आवश्यक है। उसकी शिक्षाओं या धर्म का प्रभाव जातियों और उसके व्यक्तियों पर क्या पड़ा यह इस निबंध में आने वाली बात नहीं। प्रत्येक जाति के स्त्री पुरुष दो अंग हैं। अपने इन दोनों रथवाहों या चक्कों के भरोसे ही कोई भी जाति संसार में उन्नति के पथ पर सरपट नहीं भाग सकती है। यंत्र में उसके टुकड़ों का यथा स्थान विन्यास जैसे उसे सजीव सा कर देता है उसी प्रकार नमाज को भी यदि इन दोनों अंगों का पृष्ठ संख्या 65 यथा स्थान विनियोग हुआ है। कुरान की शिक्षा एक विशेष काल को लेकर प्रवृत्त हुई है। उसको एक विशेष परिस्थिति में बनकर जमना बढ़ना और फलना फूलना पड़ा है। अतः यह अन्याय होगा यदि हम उस समय की अवस्था को बिना दिखाए ही इसका वर्णन आरंभ कर दें। कुरान में स्त्रियों का जो स्थान प्रदान किया गया है उसकी महत्ता हमें उस समय की स्थिति पर विचार करने से ही मालूम होगी। स्त्रियों पर अत्याचार न करो। कुरान का निम्न वाक्य तत्कालीन स्त्री समाज की अवस्था और इस्लाम के उस पर के उपकार को प्रकट करता है। हे विश्वासियों मुसलमानों, यह न्याय नहीं कि तुम बलपूर्वक स्त्रियों को दाएं भाग में लो या जब तक उसका दुराचार साफ न मालूम हो जाए तब तक अपना दिया ले लेने के लिए बंद कर रखो। स्त्रियों के साथ न्याय अनुमोदित व्यवहार करो। फिर यदि तुम्हें वह प्रिय न हो तो इसके लिए क्या हो सकता है। कोई वस्तु तुम्हें अच्छी न प्रतीत हो जिसमें कि परमेश्वर ने बहुत सी भलाई दे रखी है। 4:3-5। उस समय अरब में रिवाज था कि पुरुष स्त्री को जब अपने पास नहीं रखना चाहता तो उस पर दोषारोपण कर उसे स्त्री धन से भी वंचित करके निकाल देता था। इसके रोकने के लिए कुरान ने कहा, यदि तुम एक स्त्री के स्थान पर दूसरी स्त्री बदलना चाहते हो और उसको धन दे चुके हो और उसमें से कुछ न लौटाओ, ऐसा करके क्या साफ अपराध और अपयश लेना चाहते हो। 4:3-6। ब्याह के योग्य स्त्रियां। सचमुच अरब निवासी स्थावर जंगम अन्य संपत्तियों की भांति स्त्रियों को संपत्ति सी समझते थे। इसके विरोध में एवं विवाह को व्यवस्थित करने के लिए उपदेश है, तुम्हारे बाप ने जिनसे ब्याह किया उनसे तुम मत ब्याह करो, पहले जैसा हो गया सो हो गया, निश्चय ही वह लज्जास्पद बात थी। 4:4-1। किन किन से ब्याह न करना चाहिए इसे आगे और स्पष्ट कहा है, तुम्हारी माता बेटी बहन फूफी मौसी भाई की बेटी बहन की बेटी दूध पिलाने वाली माँ दूध की बहन सास तुम्हारे द्वारा पोसी तुम्हारी स्त्रियों की बेटियां बेटों की बहुएं दो बहनें एक साथ या तुम्हें ब्याह के लिए निषिद्ध हैं। 4:4-1। परतंत्रता पापों की माँ है। परतंत्रता की पराकाष्ठा में पहुंचकर स्त्रियां स्वयं भी अनेक दुर्व्यसनों में लिप्त हो गई थीं, जिनसे निकालने के लिए उपदेश है, ईश्वर को साक्षी न बनावे, चोरी न करे, व्यभिचार न करे, संतान न मारे, झूठ सच न करें इत्यादि बातों की शपथ लेने आवे तो हे नबी परमात्मा से तू उनके वास्ते क्षमा मांग, निसंदेह प्रभु क्षमाशील है। 62:6। विवाह की संख्या। कुरान यद्यपि बहुविवाह का प्रतिपादन करता है किंतु उसमें उसने 4 तक की सीमा रखी है। पृष्ठ संख्या 66। जो समय के अनगिनत पत्नी रखने वाले अरब वालों पर बलात्कार सा था। कुरान ने कहा है, तो यथेच ब्याह करो 2-2, 3-3, 4-4। पुनः यदि भय हो कि इंसाफ नहीं कर सकोगे तो एक ही। 4:1-3। यहाँ पर यह शर्त रखी है कि यदि तुम सबके साथ न्यायपूर्वक बरत सको तब, किंतु यह स्पष्ट है कि बहुत सी स्त्रियों से ब्याह करके कितने लोग न्यायपूर्वक बरतने वाले हैं। रही बिल्ली के भाग में छीका टूटने वाली कहावत की तरह अपने मतलब की बात ढूंढकर बहुत ब्याह करने के लिए तैयार हो जाने वाली बात, उनके लिए तो वस्तुतः यहाँ कोई अवकाश नहीं। कुरान ने उस समय की परिस्थिति देखकर 4 तक की सीमा करके उसके साथ यह भी शर्त लगा दी, यह तो विलास प्रिय धनिकों का काम हुआ जिन्होंने टट्टी की आड़ में शिकार खेलना आरंभ कर दिया। भला बहुत से नवाबों के बाड़ों के विषय में कहां कुरान ने आज्ञा दी है। ऐसी स्वेच्छाचारिता सब धर्मों के अनुयायियों में देखी जाती है। गृहस्थाश्रम या विवाह संबंधी सभी वेद मंत्रों में पति पत्नी के लिए द्विवचन दंपति, जंपति, जायापति आदि शब्द आते हैं, किंतु क्या अपने को वेदों के अनुयायी कहने वाले बहुपत्नी विवाह से सर्वथा बाज आए? इस्लाम में स्त्रियों के संबंध की एक और बात खटकती है, वह है पर्दे की जकड़बंदी। इसके द्वारा स्त्रियां घोर एकांत कैद में डाल दी जाती हैं, वकूफ मंडूक बना दी जाती हैं। इस पर और विचार करने से पूर्व हम मूल उस वाक्य को रख देना चाहते हैं जिसमें पर्दे का वर्णन है। हे नबी, अपने स्त्रियों, बेटियों और मुसलमान स्त्रियों से कह दे कि अपनी चादरें थोड़ी सी ऊपर लटका लें, या इसलिए कि पहचानी जावे और फिर कोई न सतावे। 33:8:1 मुसलमान स्त्रियों से कह दे कि दृष्टि नीची रखें, अपने गोप्य स्थानों को आच्छादित रखें, जो स्वयं प्रकट है उसके सिवाय अपने सौंदर्य को न दिखावें। अपने पति, पिता, ससुर, पुत्र, पति के पुत्र, भाई, भतीजा, भांजा, अपनी स्त्रियां, दासियां, आश्रिताएं, न संबंध रखने वाले पुरुष या बालक जो स्त्री भेद नहीं जानते, इन सबके सामने के अतिरिक्त अपनी ओढ़नी से सीना ढाक लें और अपने सौंदर्य को न खोलें। पैर धमकाती न चले जिसमें कि छिपा जेवर आदि जान पड़े। 24:4:5 पर्दा। पहले वाक्य में तो चादर ढाकने का अभिप्राय मुसलमान जानी जाने तथा न सताई जाने के लिए कहा गया है। दूसरे वाक्य में भी सौंदर्य को दिखाने से रोकने का अभिप्राय गोराबंदी लेना अन्याय है। स्पष्ट अर्थ तो यह है कि जैसे पाश्चात्य स्त्री समाज में सौंदर्य दिखलाने का रोग यहाँ तक लग गया है कि जाड़े पाले में आधा वक्षस्थल नंगा रखती हैं, कहीं वही बात स्त्रियों में न घुसने लगे। दरअसल इस प्रकार की बीमारी स्त्री पुरुष दोनों समाजों में भी किसी प्रकार आना ठीक नहीं है। कहावत है कि शैतान भी अपने मतलब को सिद्ध करने के लिए शास्त्र की दुहाई देता है। उसी प्रकार यह मुसलमान पतियों का सरासर अन्याय है जो कुरान में लिखे पर्दा ही पर संतोष न कर उन्होंने स्त्रियों को सात संगीन पर्दे में बंद कर रखा है। कुरान ने तो विशेष श्रृंगार आदि के न दिखाई देने के लिए कुछ विशेष अंगों को ढाकने के लिए कहा, किंतु यहां लोगों ने सारे बदन को ही ढाकने पर बस न की, ऊपर से सात तालों के अंदर भी उन्हें बंद करना उचित समझा। यह केवल मुसलमान पुरुषों की ही बात नहीं, सच कहते हैं गुरु तो गुरु ही रह गए, चेला चीनी हो गया। हिंदुओं के पुरुषों ने पृष्ठ संख्या 67 कभी सुना ना होगा कि पर्दा प्रथा किस चिड़िया का नाम है। आज भी महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र, द्रविड़, मालाबार इत्यादि आधे से अधिक भारतवर्ष के हिंदू पर्दा को नहीं जानते, किंतु जिस प्रकार आज अंग्रेजी राज्य में बहुत से अंग्रेजों का खान पान, रहन सहन गौरवपूर्ण समझ हिंदुओं ने मुसलमानों की इस रीति को अपनाकर उसने और तरक्की की। पहले पहल इन रीतियों को धनिकों और बड़े आदमी कहे जाने वाले लोगों ने लिया, पीछे बड़े आदमी बनने की इच्छा वाले सभी लोगों ने अपनी स्त्रियों पर इस नए दंड विधान का प्रयोग आरंभ किया। शरीर में कोमलता के वृद्धि के लिए राजधाराओं को असूर्य पश्चात तो देखा गया है, किंतु अचंद्र प्रश्या होने का सौभाग्य आज ही प्राप्त हुआ है। यह वास्तव मा वियोष्ठम, यहाँ दोनों यहाँ ही रहो, मत अलग हो। इस विवाह संबंधी वेद मंत्र में स्पष्ट विवाहित जोड़े को अलग होने का निषेध किया है। इस प्रकार आर्य हिंदू धर्म विवाह संबंध को अखंडनीय मानता है, किंतु कई धर्म विशेष स्थिति में विवाह संबंध त्याग या तलाक की अनुमति देते हैं। कुरान कहता है जो अपनी स्त्रियों से तलाक की शपथ खा लेते हैं उनके लिए 4 मास की अवधि है, इसी बीच में यदि मेल कर ले तो ईश्वर क्षमाशील और कृपालु है, यदि तलाक का निश्चय कर लिया तो भगवान उसका सुनने वाला और जानने वाला है। तलाक दी गई स्त्रियां 3 ऋतुकाल तक प्रतीक्षा करें, उनके योग्य नहीं कि जो ईश्वर ने उनके उदर में उत्पन्न किया उसे छिपा रखें। उनके पतियों को भी इतने दिन तक उन्हें फिर ले लेने का अधिकार है यदि सुधार चाहें। स्त्रियों को भी न्यायानुसार वैसा अधिकार है, किंतु पुरुषों का उन पर दर्जा है। 2:28:5-7 यद्यपि यहाँ कुछ शर्तों के साथ तलाक की अनुमति दे दी गई है, किंतु तो भी इसे अच्छा नहीं माना गया है। यह महात्मा मोहम्मद के इस वचन से भी प्रकट होता है। हलाला और मुत, मनुष्य के लिए विधान की गई सारी बातों में तलाक परमात्मा को अत्यंत अप्रिय है। यही नहीं, तलाक दे देने पर भी कुरान एक बार फिर स्त्री पुरुषों को मेल करने का अवसर देता है। इस्लामी परिभाषा इस रीति को हलाला कहते हैं। कुरान ने कहा है यदि उसे तलाक दे दिया तो इस पुरुष को उसके बाद वह स्त्री हलाला विहित नहीं जब तक कि दूसरा पति उससे विवाह न कर ले। फिर उसने यदि तलाक दे दिया तो उन दोनों पर दोष नहीं, वह अपने पूर्व पति पत्नी संबंध पर लौट जा सकते हैं यदि समझे कि वह परमात्मा की मर्यादा को निभा सकेंगे। 2:29:2 सामान्य विवाह संबंध के अतिरिक्त शिया संप्रदाय वाले मुसलमान एक और सावधिक पति पत्नी संबंध स्वीकार करते हैं जिसका पारिभाषिक नाम मुत है। यह संबंध सदा के लिए नहीं होता बल्कि कुछ खास अवधि मुकर्रर करके होता है, उसके बाद वह संबंध स्वयं टूट जाता है। स्त्री पुरुष के विषय में कुरान ने उपमा देकर कहा है स्त्रियां तुम्हारा वस्त्र हैं और तुम उनके। 2:23:5 स्त्रियां तुम्हारी हैं। 2:27:2 पृष्ठ संख्या 68 स्त्री पुरुष के साथ पुरुष स्त्री के अपने दोषों को ढांक सकता है, इसलिए यहां उनको एक दूसरे का वस्त्र कहा द्वितीय वाक्य में न केवल संतानोत्पत्ति के विचार से ही पुरुष का कृषि कृषक होना उचित है, बल्कि जिस प्रकार कृषि पर कृषक का जीवन अवलंबित है, वैसे ही स्त्री पर पुरुष जगत का अस्तित्व होना भी इससे ध्वनित होता है। पुरुष स्त्रियों पर अधिष्ठाता है, इसलिए कि परमात्मा ने किसी को किसी पर बढ़ाई दी। 4.6.1 यह बात अवश्य स्त्रियों के लिए निराशाजनक है। इसमें पुरुषों का स्त्रियों पर अचल आधिपत्य सिद्ध है, किंतु तो भी तत्कालीन स्थिति और इस्लाम द्वारा उनको दिए गए अधिकार स्त्री जगत पर कम उपकार नहीं है। उस परिस्थिति में जहाँ तक हो सकता था उनका किया गया। अब पुरुषों के स्त्रियों पर अधिष्ठातृत्व का निर्णय मुसलमान स्त्रियों के हाथ में है। यद्यपि धर्म के नाम पर मुसलमान पतियों ने अपने गृह लक्ष्मियों पर बहुत अत्याचार किया है और अब भी वैसा हो रहा है, किंतु इस बिंदु के पढ़ने से ज्ञात होगा कि उन सबके लिए कुरान या इस्लाम दोषी नहीं। इतिहास साक्षी है कि महात्मा मोहम्मद की सबसे छोटी उम्र की तथा अत्यंत सुंदर पत्नी श्रीमती आयशा और उनकी सपत्नी श्रीमती उम्स सुलमा उहद के युद्ध में घायलों को अपने हाथ से पट्टी बांधती तथा पानी पिलाती थीं। श्रीमती सफिया महात्मा की एक तीसरी पत्नी ने पुरुषों की अनुपस्थिति में बचे हुए लोगों को शत्रु से बचाने के लिए स्वयं सैनिक का काम किया। यदि उस समय स्त्रियाँ आजकल की मुसलमान स्त्रियाँ सी होती तो कब उनसे ऐसे काम हो सकते थे। मिस्र, टर्की आदि मुसलमान देशों का स्त्री समाज अब जाग उठा है। अभी उस दिन अगोरा से एक स्त्री के संपूर्ण तुर्क राज्य के शिक्षा मंत्री होने का समाचार आया है। अभी हाल में मिस्र की सहस्त्रों स्त्रियों ने पर्दा हटा अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए उत्सव मनाया। यह इस बात के लिए पर्याप्त प्रमाण है कि मुसलमान स्त्री जाति का भी भविष्य अत्यंत उज्ज्वल है।